डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 17 है। मैथ्यू 24 से 25। 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 17 है, मैथ्यू 24-25। इस संदर्भ में यीशु कह रहे हैं कि जब आप उस अपवित्रता को देखें जो विनाश की ओर ले जाएगी तो आपको भाग जाना चाहिए। यहूदी देशभक्तों ने वर्ष 66 में मंदिर में पुजारियों की हत्या कर दी थी। जोसेफस जो इसके माध्यम से रहता था और वास्तव में उस समय युद्ध का हिस्सा था, रिपोर्ट करता है कि उसका मानना था कि यह अपवित्रता थी जो अंतः विनाश का कारण बनी और 3.5 साल बाद मंदिर को नष्ट कर दिया गया। खैर, यीशु कहते हैं जब आप इसे देखें तो आपको भागने के लिए तैयार रहना होगा, और वह मार्क में है। यह ल्यूक भी है जो इसे और अधिक स्पष्ट करता है। ल्यूक कहते हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो तुम्हें भागना होगा। अधिकांश लोग जब युद्ध आ रहा होता था तो ग्रामीण इलाकों के लोग एक शहर में भाग जाते थे, यह आशा करते हुए कि सेना उनके पास से गुजर जाएगी, यह आशा करते हुए कि अगर घेराबंदी हुई तो सेना थक जाएगी और कहीं और चली जाएगी। लेकिन कहीं और जाने के बजाय रोमनों ने यरूशलेम को तब तक घेरे रखा जब तक कि लोग शहर के अंदर भूख से नहीं मर गए, और यीशु ने सच्चा ज्ञान दिया था। ठीक है, जब सेना गुजर रही हो तो आप ग्रामीण इलाकों में नहीं रह सकते, लेकिन शहर में न जाएं क्योंकि आप तब तक वहीं फंसे रहेंगे जब तक रोम की घेराबंदी पूरी नहीं हो जाती, ठीक उसी तरह जैसे सिकंदर महान ने सोर को घेर लिया था। जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते, यह आगे नहीं बढ़ेगा। ल्यूक कहते हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो तुम्हें भागना होगा। अधिकांश लोग जब युद्ध आ रहा होता था तो ग्रामीण इलाकों के लोग एक शहर में भाग जाते थे, यह आशा करते हुए कि सेना उनके पास से इसके बजाय आप पहाड़ियों में अधिक सुरक्षित रहेंगे। यीशु तुरंत भाग जाने को कहते हैं। जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। यरूशलेम पहाड़ी देश में था और वह भागने के लिए एक रणनीतिक स्थान था। कई संकरे पहाड़ी रास्ते और आपकी भारी संख्या में सेना वहां वास्तव में आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को अकेले ही जाना होगा और उनके ऊपर के लोग उन पर पत्थर फेंक सकते हैं, उन्हें रास्ते से हटा सकते हैं इत्यादि। दाऊद शाऊल के पास से जंगल में भाग गया। मैकाबीज ने पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध का भी अभ्यास किया, इसलिए यह समझ में आया। यीशु भागने पर जोर दे रहे थे, वह जल्दबाजी पर जोर देते थे। अपने घर की छत पर कोई भी व्यक्ति घर से कुछ भी लेने के लिए नीचे न जाए। खैर, उस समय उनकी छतें सपाट थीं। लोग पीटर की तरह छत पर सब्जियां सुखाते थे और वे प्रेरितों के काम 10 में छत पर प्रार्थना कर सकते थे। लोग छत पर या कहीं भी अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। उनकी छतें सपाट थीं। आम तौर पर आप बाहरी सीढ़ी से छत तक पहुंचते हैं, या यदि आप वहन नहीं कर सकते तो छत तक पहुंचने के लिए आपके पास सीढ़ी होती है। आपके पास घर के अंदर छत तक जाने वाली कोई चीज नहीं थी, तो जब आप छत से भागे तो आप बाहर आए। यह आपको सीधे घर के अंदर नहीं ले जाएगा। इतने सारे लोग, अगर उन्हें जल्दी से भागना होता तो वे घर के अंदर नहीं जाते, वे बस चले जाएंगे। यीशु कहते हैं, किसी भी मूल्यवान चीज को पाने के लिए घर में जाने के लिए भी समय न निकालें। यीशु जल्दबाजी का एक और उदाहरण देते हैं। मैदान में कोई अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। खैर, सुबह जब कोई व्यक्ति उठता था तो अपना लबादा अपने साथ ले जाता था जिसे पहनकर वह रात को सोया था। यदि वे बहुत गरीब होते तो यह उनका कंबल या उनका बिस्तर होता। वे सुबह की ठंडक में इसका उपयोग करते थे जब वे मैदान में जाते थे, चाहे वे शहर या कस्बे से आ रहे हों या बस बाहर जा रहे हों, यदि वे उस संपत्ति पर रह रहे हों जहां मैदान था। वे बाहर जाते थे और दोपहर तक खेत में काम करते थे, क्योंकि सूरज गर्म था। दोपहर में वास्तव में लोगों को छाया में आना होता था और धूप से दूर जाना होता था और आराम करना होता था। लेकिन दोपहर तक जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, वे आम तौर पर अपना लबादा मैदान के किनारे छोड़ देते थे। वे बाहरी लबादा पहनकर काम नहीं करेंगे। लेकिन यीशु कहते हैं, यह लबादा जितना महत्वपूर्ण है, भले ही आप कहते हैं कि आपको रात में सोने के लिए इसकी आवश्यकता है, भले ही आपको ठंड होने पर इसकी आवश्यकता होती है, भले ही यह एक ऐसी चीज है जिसे व्यवस्था विवरण कहता है कि एक लेनदार किसी से जब्त नहीं कर सकता है रात भर कर्जदार। जीसस ने कहा, छोड़ो इसे। आपका जीवन आपकी सबसे कीमती संपत्ति से भी अधिक मायने रखता है। जब तुम्हें पता चले कि फैसला आने वाला है तो तुरंत भाग जाओ। मेरी पत्नी अफ्रीका में अपने देश में हुए युद्धों के दौरान कई बार शरणार्थी बनने की स्थिति में थी, और जिस समय वह 18 महीने के लिए शरणार्थी बनी, ऐसा होने से पहले वह उसके साथ थी, उसके परिवार का एक हिस्सा, पहले ही भाग चुका था, विशेष रूप से परिवार के सक्षम मजबूत पुरुष, और पड़ोस के बाकी लोग भाग गए थे क्योंकि इलाके में लड़ाई स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी। स्थानीय सैनिकों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि क्षेत्र में लड़ाई होने वाली है। वे बम फटने की आवाज सुन सकते थे, वे गोलियों की आवाज सुन सकते थे। अन्यथा पड़ोस में सन्नाटा था क्योंकि उनके पड़ोसी चले गए थे। तो यह मेरी पत्नी और उसकी बहनें थीं, जिनमें से एक की हाल ही में सर्जरी हुई थी, और उनकी वृद्ध माँ, लेकिन वे भाग नहीं सके क्योंकि उनमें से कोई भी उसके वृद्ध पिता को नहीं ले जा सका। उसके पिता आधे लकवाग्रस्त थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। और अंत में उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो कृपया किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो हमारी मदद कर सके। उनके आमीन कहने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, और यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके आने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपने पिता को एक ठेले में बिठाया और इस आदमी ने ठेले को धक्का दे दिया और वे जंगल में भाग गए। इस बीच मारपीट चल रही थी। वे अपने पीछे शहर का एक हिस्सा जलता हुआ देख सकते थे। तुम्हें जल्दबाजी में भागना होगा। उनके पास यह निर्णय लेने के लिए केवल थोड़ा सा समय था कि उन्हें अपने साथ क्या ले जाना है और क्या पीछे छोड़ना है। मेरी पत्नी ने अपना पासपोर्ट ले लिया, लेकिन कई शरणार्थी, भले ही आप कानूनी तौर पर पासपोर्ट के बिना किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, आपातकाल के समय में लोग अक्सर अपना पासपोर्ट लेना भी याद नहीं रख पाते हैं, भले ही उनके पास शुरुआत में पासपोर्ट हो। इसलिए लोग जल्दबाजी में भाग रहे थे और कुछ लोग बुजुर्ग रिश्तेदारों को पीछे छोड़ गए थे। कुछ लोगों ने दूसरों को पीछे छोड़ दिया। मेरी पत्नी अपनी पीठ पर एक बच्चे के साथ साथ सिर पर अन्य सामान भी ले जा रही थी। अन्य बच्चे ले जा रहे थे, अन्य बुजुर्ग लोगों को ले जा रहे थे। शरणार्थियों के लिए यह बहुत कठिन स्थिति थी। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम्हें भागना होगा। मेरी पत्नी को उन अन्य महिलाओं के प्रति विशेष चिंता थी जिन्हें उसने देखा था जो गर्भवती थीं या स्तनपान करा रही थीं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। उनके लिए चलना बहुत कठिन था। यीशु को इन महिलाओं पर भी वैसी ही दया है। वह कहता है, हाय उन पर जो गर्भवती हों या दूध पिलाती हों। जो लोग गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, उनमें मृत्यु, रक्तस्राव, गर्भपात आदि का खतरा अधिक होता है। उनका अपना स्वास्थ्य खराब था और जल्दी से भागना बहुत मुश्किल था। लेकिन वह यह भी सोच रहे होंगे कि यहूदी साहित्य में अक्सर बच्चों के खोने पर शोक व्यक्त किया जाता है, क्योंकि जब उनके पास रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है तो शिशुओं के भुखमरी या कुपोषण से मरने की आशंका सबसे अधिक होती है। और मिस्र में हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं, उनमें फिर से ऐसा लगता है कि आधे बच्चे वयस्क नहीं हुए हैं, और उनमें से सबसे बड़ी संख्या शैशवावस्था में ही मर गई। जोसेफस रिपोर्ट करता है कि हमने व्यवस्था विवरण 28 से क्या अपेक्षा की होगी कि यरूशलेम में अकाल के दौरान कुछ माताएं इतनी भूखी हो गईं कि उन्होंने वास्तव में अपने बच्चों को मार डाला और खा लिया। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो, श्लोक 20 मार्क में यह शामिल नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि यह सप्त के दिन न हो। खैर, सप्त के दिन शहर के द्वार बंद रहेंगे, बाहर निकलना कठिन होगा और सप्त के दिन परिवहन जुटाना भी कठिन होगा। केवल शिष्य ही स्थिति की गंभीरता को पहचानेंगे, केवल यीशु के अनुयायी ही गंभीरता को पहचानेंगे। इसलिए यदि आप यरूशलेम में हैं तो प्रार्थना करें कि यह सप्त के दिन न हो, और श्लोक 20 में यह भी प्रार्थना करें कि आपकी उड़ान सर्दियों के दौरान न हो। सर्दी में यात्रा करना बहुत कठिन था, न केवल समुद्र पर बल्कि कभी कभी जमीन पर भी। सर्दी यात्रा के लिए इतनी कठिन थी कि सेनाएं भी आराम करती थीं। और यह विशेष रूप से सच था यदि आप पहाड़ी देश में थे, कभी कभी बर्फीला यहूदी पहाड़ी देश भी। इसके अलावा यहूदिया में सर्दी बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में अक्सर नदियों में बाढ़ आ जाती थी और उन्हें पार करना मुश्किल हो जाता था। आपके पास सूखी वाड़ियां या सूखी खाड़ी भी थीं जो मौसम के दौरान पानी से भर जाती थीं, जिससे यात्रा करना और भी कठिन हो जाता था। जोसेफस हमें बताता है कि वास्तव में यह सर्दियों में नहीं था, यह वसंत के दौरान था, लेकिन जॉर्डन नदी अभी भी बाढ़ में थी। ये लोग यरूशलेम में शरणार्थी नहीं थे, बल्कि कहीं और भाग रहे भगोड़े थे। यहूदी लोग जो रोमियों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, जॉर्डन नदी तक पहुंच गए। वे इसे पार करने जा रहे थे, लेकिन पानी इतना अधिक था कि रात के समय उन्होंने इसे पार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके साथ के कुछ छोटे बच्चे डूब जाएंगे। उन्होंने इसे सुबह ही पार करने का निश्चय किया। दुर्भाग्य से सुबह के उजाले में रोमन सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनका वध कर दिया। जल्दबाजी बहुत जरूरी थी। यीशु करुणा व्यक्त कर रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मूसा ने फिरौन के सेवकों को आने वाले ओलों के बारे में चेतावनी दी थी, और जिन्होंने उसकी बात सुनी उन्होंने उस पर ध्यान दिया, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। जल्दबाजी वास्तव में महत्वपूर्ण थी। तात्कालिकता अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपको तेजी से भागना होगा। 68 के वसंत के बाद रोमनों के पास भागना लगभग असंभव था। प्रारंभ में जब यहूदी क्रांतिकारी ने शहर पर कब्जा कर लिया, एक बार जब उन्होंने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, एक बार जब उन्होंने शहर की दीवारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ग्रामीण इलाकों से भगोड़े यह सोचकर आते थे कि यह सुरक्षित है, लेकिन आप बाद में बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि क्रांतिकारियों ने कहा, नहीं, हम इसमें एक साथ हैं। आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। इसलिए कोई भी शहर नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी लोग गेट पर इन गार्डों से बचने में कामयाब हो जाते थे। एक मामले में हमें योचनान बेन जेकाई की कहानी सुनाई गई है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। उन्होंने और उनके शिष्यों ने भागने का फैसला किया। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह मर गया हो। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। वे उसे बाहर ले गए और पहरेदारों ने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, नहीं, यह तो शव है। हम पवित्र शहर के अंदर एक शव नहीं छोड़ सकते। यह शहर को अपवित्र करता है। गार्ड, आप जानते हैं, शहर में बहुत सारे शव थे, लेकिन उन्होंने उसे बाहर जाने दिया। और जैसे ही वे शहर की दीवार से काफी दूर चले गए, योचानन ने अपने स्ट्रेचर से छलांग लगा दी और वह और उसके शिष्य भाग गए और रोमनों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अंततः रोमनों के सामने समर्पण असंभव हो गया। कई सेनापतियों को स्थानीय स्तर पर भर्ती किया गया था। वस्तुतः सभी सहायकों की भर्ती स्थानीय स्तर पर की गई थी। और इतनी सारी रोमन सेनाएं जो यहां तैनात थीं, आपके पास बहुत सारे सीरियाई सहायक थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। जोसीफस आवश्यकता से अधिक रोमनों का अपमान नहीं करना चाहेगा, विशेष रूप से अपने रोमन संरक्षकों को देखते हुए, विशेष रूप से यह देखते हुए कि रोमनों ने युद्ध जीता था इत्यादि। लेकिन जोसेफस इन सीरियाई रंगरूटों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सीरियाई सहायकों के बीच एक अफवाह फैल गई कि यरूशलेम से भाग रहे कुछ यरूशलेम वासियों ने गहने निगल लिए ताकि वे बाहर निकलने के बाद अपने लिए जीवन बना सकें। उन्होंने गहनों को निगल लिया और फिर बाद में मल त्याग के बाद उन्हें वापस ले आए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वे पहली बार भागे तो उनकी खोज की जाएगी। तो सहायक रंगरूटों ने कहा, इन लोगों ने गहने निगल लिए होंगे। उस समय से जो कोई भी यरूशलेम से भाग गया, उसे इन सहायकों ने रोक लिया और यह देखने के लिए उसका दरवाजा खोल दिया कि क्या उनके पास कोई आभूषण है। यरूशलेम से जीवित बच निकलना अब संभव नहीं था। हालांकि यरूशलेम के ईसाई पहले ही भाग चुके थे। यीशु के अनुयायियों को उसकी चेतावनी थी। इसके अलावा प्रारंभिक चर्च रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि यरूशलेम के भीतर कुछ भविष्यवक्ताओं, कुछ ईसाई भविष्यवक्ताओं ने उन्हें भागने की चेतावनी दी थी और इसलिए वे भाग गए। इस मामले में जॉर्डन घाटी तक, जरूरी नहीं कि पहाड़ी देश में। वे भाग गए और सुरक्षित रूप से एक अलग पहाड़ी देश डेकापोलिस में पेला पहुंच गए। आखिरकार यरूशलेम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। मंदिर को ही जला दिया गया और मंदिर की जगह पर लोगों को मारने और जिंदा जलाने के बाद मंदिर की जगह पर रोमनों ने अपने मानक बनाए। मानकों पर रोमन सम्राट का प्रतीक चिन्ह अंकित था। उनमें सम्राट की छवि थी। मृत सागर स्क्रॉल में उन्हें मूर्तियां माना जाता था। वास्तव में इससे पहले गवर्नर के रूप में पीलातुस का पहला कार्य, जोसेफस हमें बताता है, इन मानकों को रात की आड़ में यरूशलेम में लाना था। परंतु भोर को जब यरूशलेम के लोग जाग उठे और उन्होंने ये खंभे देखे तो कहा, इन मूर्तों को हमारे पवित्र नगर से ले जाओ। और पीलातुस ने उन्हें मार डालने की धमकी दी। उन्होंने कहा, हमारा गला काट दो। इन मूर्तियों को हमारे पवित्र शहर को अपवित्र करने देने की बजाय हम मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन अब ये मानक मंदिर की जगह पर खड़े कर दिए गए और मंदिर की जगह पर देवता के रूप में सीजर को बलि चढ़ा दी गई। यीशु ने उजाड़ से जुड़ी आने वाली अपवित्रता के बारे में चेतावनी दी थी और उसके लोगों ने न सुनी। यरूशलेम ने कम से कम नहीं सुनी। हालांकि असहनीय क्लेश में भगवान को स्वयं पर दया आती है और उसने उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी थी। वह महान क्लेश के बारे में डैनियल की भाषा का उपयोग करता है। लेकिन उनका कहना है कि अपने लिए दिन छोटे कर दिए जाएंगे। खैर, कुछ लोग, क्योंकि यीशु आने वाले फैसले, मंदिर पर फैसले की बात करते हैं, वह अपने आने की बात भी कहने वाले हैं। याद रखें, शिष्यों ने दो प्रश्न पूछे थे और कुछ लोग यह मान लेते थे कि जब मंदिर का विनाश होगा तो वह तुरंत आ जाएंगे और कुछ लोग यीशु होने का दावा करते हुए उठ खड़े होंगे। लेकिन जब यीशु वास्तव में आएंगे तो आकाश भी इसकी घोषणा करेगा। श्लोक 23 से 28 तक वह कहते हैं कि जहां भी शव होगा वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। इस शब्द का अर्थ चील भी हो सकता है, लेकिन ग्रीक में इसमें गिद्ध भी शामिल है। यह एक व्यापक शब्द था। जैसा कि पुराने नियम के कई संदर्भों में है, इजेकील 39 इत्यादि, और आपके पास यह ग्रीक साहित्य में भी है, जहां भी युद्ध के मैदान शवों से भरे होते हैं, कुत्ते दावत के लिए आते हैं और हवा के पक्षी इन शवों को खाने के लिए आते हैं, कभी कभी मांस के टुकड़े कहीं और गिरा देते हैं। युद्ध का अत्यंत विचित्र वर्णन, और यह आपके पास पुराने नियम में भी है। और निस्संदेह दाऊद गोलियत से कह रहा है, मैं तुम्हारा शरीर आकाश के पक्षियों को दे दूंगा इत्यादि। मत्ती 24 श्लोक 29 से 31 में यीशु की वापसी। यीशु के रहस्योद्धाटन के प्रभाव लौकिक होंगे। जब तुम मनुष्य के पुत्र का चिन्ह सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखो, वह सूर्य और चंद्रमा इत्यादि के बारे में बात करता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ग्रामीण इलाकों में आकर कह रहा हो, मैं यीशु हूं, वापस आ जा। यह कुछ ऐसा है जिसे हर कोई देखेगा। इसलिए आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि यह वास्तव में यीशु है या नहीं। यदि वह लौकिक रूप से नहीं आ रहा है तो यह यीशु नहीं है। श्लोक 30 में राष्ट्र आतंक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, फिर से कुछ पुराने नियम की भाषा का उपयोग करते हुए, और वह बादलों के साथ आ रहा है। और फिर पद 31 में यीशु के अनुयायियों को छुटकारा दिया जाएगा। वह स्वर्ग के हर छोर से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, और उस समय अधिकांश लोग दुनिया को एक डिस्क के रूप में देखते थे। कुछ लोगों ने इसे एक गोले के रूप में देखा, लेकिन यदि यह एक डिस्क थी तो इसके ऊपर स्वर्ग का गुंबद था। तो स्वर्ग के एक छोर से दूसरे तक मार्क में यह स्वर्ग और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक अधिक स्पष्ट है। लेकिन यीशु सिर्फ अंत के बारे में ही बात नहीं करेंगे, वह कुछ ऐसी चीजें भी देता है जिनका अंत नहीं होता। 70 में पूरी होने वाली घटनाओं के अलावा और अंत के अलावा यीशु अंत के कुछ गैर संकेत भी देते हैं। उनके समय में कई भविष्यवाणी शिक्षक थे जिन्होंने कहा, ठीक है, जब आप इस चीज को और उस चीज को देखते हैं तो आप जानते हैं ये सभी अंत के संकेत हैं। और उन्होंने बहुत से चिन्हों की सूची बनाई जिन्हें यीशु ने सूचीबद्ध किया था। उन्होंने कुछ अन्य जैसे उत्परिवर्ती शिशुओं और उस जैसी चीजों को भी सूचीबद्ध किया। उस तरह की चीज जो आप मेरे देश में सुपरमार्केट के टैब्लॉयड में देखते हैं। लेकिन वैसे भी 24 आयत 4 और 5 में झूठे भविष्यवक्ता थे। यीशु कहते हैं कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं को देखने जा रहे हैं। आप छंद 6 और 7 में युद्धों की अफवाहें देखने जा रहे हैं। श्लोक 7 आप अकाल और भूकंप देखने जा रहे हैं। लेकिन वह श्लोक 6 और 8 में कहते हैं, ऐसी चीजें अवश्य होंगी लेकिन अंत अभी भी आना बाकी है। ये सभी चीजें प्रसव पीड़ा की शुरुआत हैं। अन्यथा आप जानते हैं, वह इन अन्य शिक्षकों में से कुछ की तरह लग रहा होता। खैर, आप देखेंगे कि ये चीजें घटित होंगी। यह अंत का संकेत है। खैर, ये चीजें पहली शताब्दी में ही घटित हो रही थीं। ये सभी चीजें पहली शताब्दी में घटित हुई और तब से ये होते भी आ रहे हैं। तो केवल उन चीजों को देखने का मतलब यह नहीं है कि अंत निकट है। आप कह सकते हैं, ठीक है, हमने एक बड़ा देखा। आप जानते हैं, मेरा मानना है कि 1400 के दशक में पुर्तगाल में इतना बड़ा भूकंप आया था। किसी समय यह बहुत बड़ा था, यह अधिक विशाल था। ऐसा अनुमान है कि महामारी या प्लेग के संदर्भ में, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता था, उसने यूरोप के लगभग एक तिहाई हिस्से को मार डाला था, या 1300 के दशक के दौरान और यूरोप में 1400 के दशक के दौरान यूरोप के एक तिहाई हिस्से को मार डाला था। हमने उनमें से बहुत सी चीजें देखी हैं। और उस समय लोगों ने ठीक ही सोचा होगा, खैर यह निश्चित रूप से युद्ध है। ये निश्चित तौर पर युद्ध की अफवाहें हैं। आप जानते हैं, ये बहुत सी भयानक चीजें हैं जो पूरे इतिहास में घटित हुई हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उन चीजों को देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अंत अभी है। ये वो बातें थीं जो उस समय के भविष्यवाणी शिक्षक कह रहे थे। यीशु अंत के लिए एक अलग संकेत देते हैं। वह अंत के लिए एक शर्त सूचीबद्ध करता है। कुछ चीजों के बारे में वह कहते हैं, अंत अभी भी आना बाकी है। परंतु फिर वह कहता है, राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का यह शुभ समाचार, परमेश्वर के शासन का यह शुभ समाचार सारे जगत में सब लोगों के लिए गवाही के समान प्रचार किया जाएगा। फिर अंत आ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि यीशु शीघ्र वापस आए? खैर, इसमें एक भूमिका है जो उन्होंने हमें निभाने के लिए दी है। दो पत्रस तीन कहता है, परमेश्वर के दिन के आने की बाट जोहता और तेज करता हूं। खैर, हम इसे कैसे तेज कर सकते हैं? दो पत्रस तीन में संदर्भ कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। वह चाहता है कि हर किसी को अनंत जीवन मिले। जब सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जा चुका है, तो हम लोगों को सुसमाचार बता सकते हैं। पुनः रोमियो 11 में यह यहूदी लोगों के परिवर्तन के बारे में बात करता है। इससे पहले यह आने वाले अन्य जातियों की पूर्णता के बारे में बात करता है। रहस्योद्घाटन भगवान के सिंहासन के सामने हर लोगों और जनजाति और राष्ट्र और भाषा के प्रतिनिधियों के बारे में बात करता है। एक चीज है जो हम कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो करने के लिए बुलाया है, हम उसमें भाग ले सकते हैं। राज्य पहले से ही है और अभी नहीं है। हम जहां तक संभव हो परमेश्वर के राज्य की पूर्ति के लिए काम कर सकते हैं। जब उसके राज्य के विषय में सब लोगों में सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। पॉल मैथ्यू 24 में यीशु की अंतिम समय की शिक्षाओं को लागू करता है। मैंने सुसमाचार की विश्वसनीयता के बारे में बात करके पाठ्यक्रम शुरू किया। मैंने बताया कि कैसे पॉल ने यीशु की कई बातें सुरक्षित रखीं। खैर, एक थिस्सलुनीकियों 4 में पॉल कहता है, यह हम प्रभु के वचन के द्वारा तुमसे कहते हैं। वह संभवतः किसी यादृच्छिक भविष्यवाणी का उल्लेख नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है, भले ही पॉल के लिखने के समय तक आपके पास औसतन 100 घरेलू चर्च थे, उन 100 घरेलू चर्चों में यदि आप 1 कुरिन्थियों 14 में पॉल जो कह रहे थे उसके अनुसार चलते हैं, तो आपके पास प्रति सेवा शायद 2 या 3 लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। हालांकि पॉल बात करता है, आप सब ऐसा कर सकते हैं। भले ही आपके पास बस यही हो, और यह हर हफ्ते हो रहा है, और अकेले यरूशलेम में अधिनियम 4:04 में 5,000 विश्वासी हैं। खैर, 5,000 पुरुष यरूशलेम अकेले अधिनियम 4:04 में विश्वास करते हैं। फिर आप सोचिए, वे घर घर और मंदिर में भी मिले थे। आप सोचिए कि उसने कितने घर लिए होंगे। संभवतः उस समय यरूशलेम में आपके पास पहले से ही कम से कम 100 गृह कलीसियाए हों। लेकिन पॉल के लिखने के समय तक हम हजारों दसियों हजारों के बारे में बात कर रहे थे। पहली शताब्दी के अंत तक भले ही औसतन 100 घरेलू चर्च हों, हम शायद 10 लाख भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं जो दी गई थीं। यह भविष्यवाणी यीशु द्वारा कही गई बातों से इतनी मेल क्यों खाएगी? पॉल एक विशेष भविष्यवाणी पर इतना अधिक निर्भर क्यों रहेगा जो यीशु द्वारा कही गई बातों से इतनी अधिक मेल खाती है? मुझे लगता है कि जब वह कहता है प्रभु के वचन के अनुसार, वह शायद किसी विशेष भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं कर रहा है जो किसी ने दी है, बस किसी ने दी है। वह शायद यीशु की अपनी भविष्यवाणी के बारे में, प्रभु के अपने शब्दों के बारे में, यीशु ने जो कहा था, यीशु ने जो सिखाया उसके बारे में बात कर रहा है। दो थिस्सलुनीकियों में वह कहता है, ये वे परंपराएं हैं जो हमने तुम्हें सौंपी हैं। ये वे बातें हैं जो पौलुस ने थिस्सलुनीके में सिखाई। और वैसे कुछ विद्वान दो थिस्सलुनीकियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं, हालांकि अधिकांश टिप्पणीकार ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने दो थिस्सलुनीकियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति 70 के बाद, मंदिर के नष्ट होने के बाद, इस अराजकतावादी व्यक्ति के मंदिर में स्थापित होने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और लोग, अगर वे किसी के नाम पर एक नकली पत्र बनाने जा रहे थे, तो वे आम तौर पर उस व्यक्ति के लंबे समय बाद ऐसा करते थे। छद्मलेखीय पत्र सामान्यतः लंबे समय के बाद के होते थे। खैर, एक और दो थिस्सलुनीकियों दोनों उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में यीशु बात करते हैं। और यदि आप यहूदी साहित्य पढ़ते हैं और आप इन चीजों को देखते हैं, तो यहूदी साहित्य में कहीं और आपको बहुत सारे अंत समय के संकेत इत्यादि मिलेंगे। कभी कभी वे इनके साथ ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन आपके पास इन सभी चीजों के एक ही स्थान पर एक साथ इस संयोजन के करीब कुछ भी नहीं है। मूल रूप से एक थिस्सलुनीकियों में दो पैराग्राफ और दो थिस्सलुनीकियों में एक पैराग्राफ में यह केवल दुर्घटनावश ओवरलैप हो जाता है, यहां तक कि अंत समय के बारे में अन्य यहूदी शिक्षाओं के प्रदर्शनों का उपयोग करते हुए भी। मुझे लगता है कि यहां हमारे पास जो कुछ है वह मैथ्यू 24 और अन्य जगहों पर यीशु की अन्य शिक्षाओं और एक और दो थिस्सलुनीकियों में जो हमारे पास है के बीच स्पष्ट समानताएं सुझाता है, जो नए नियम के शुरुआती हिस्से हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एक थिस्सलुनीकियों दूसरा सबसे पुराना है। मुझे लगता है कि यह जल्द से जल्द होगा, लेकिन जो भी हो, न्यू टेस्टामेंट के बहुत प्रारंभिक भाग संभवतः पुनरुत्थान के दो दशकों के भीतर लिखे गए। अब आपके पास झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में एक चेतावनी है, मत्ती 24:24। दो थिस्सलुनीकियों दो झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ तुम्हारे पास भी यह है। अंत समय धर्मत्याग और अधर्म, मैथ्यू 24:2 थिस्सलुनीकियों 2। मैथ्यू 24 में अब जन्म पीड़ा की शुरुआत, रोमियो 8:22 में अब प्रसव पीड़ा, और एक थिस्सलुनीकियों 5 में अंतिम जन्म पीड़ा भी। आपके पास अपवित्रता है, मैथ्यू 24 में मंदिर। आपके पास मंदिर के स्थान पर अधर्म के व्यक्ति की भी पूजा की जाती है जो भगवान होने का दावा करता है, दो थिस्सलुनीकियों 2। अधिनियम अध्याय 1, यीशु कहते हैं, आप इसराइल की बहाली के समय या मौसम को नहीं जानते हैं। एक थिस्सलुनीकियों 5:1, तुम मसीह के पुनरागमन के समय या ऋतुओं को नहीं जानते। यह हमारे पास यीशु की कुछ अन्य शिक्षाओं के साथ भी है। यीशु का आगमन, मैथ्यू 24 में उसका पारोसिया। पारोसिया का अर्थ उपस्थिति या आगमन हो सकता है। इसका उपयोग अक्सर शाही आगमन के लिए किया जाता था, जो यीशु के लिए उपयुक्त होता, किसी राजा या उच्च गणमान्य व्यक्ति के आगमन के लिए। खैर, पॉल इसका उपयोग करता है और इसे एक अन्य शब्द एपोन्टेसिस के साथ जोड़ता है, जिसे अक्सर ऐसी बैठक के साथ जोड़ा जाता था। जब कोई राजा या कोई गणमान्य व्यक्ति किसी शहर में आ रहा होता था, तो शहर से एक दूतावास उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकलता था। वह शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का अपोन्टासिस, बैठक और अनुरक्षण होगा। यीशु बादलों में आता है, मत्ती 24:30। वह एक थिस्सलुनीकियों 4:17 में बादलों में आता है। वह अपने चुने हुए लोगों को अपने स्वर्गदूतों द्वारा इकट्ठा करता है, 24:31। खैर, दो थिस्सलुनीकियों 2 में वह विश्वासियों को इकट्ठा करता है। और एक थिस्सलुनीकियों 4:16 में प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के द्वारा वह मैथ्यू 24:31 में तुरही की आवाज के माध्यम से अपने चुने हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है। खैर, वह एक थिस्सलुनीकियो 4:16 में तुरही बजाकर इकट्ठा होता है। वास्तव में एक कुरिन्थियों 15:52 में वह इसे अंतिम तुरही कहता है, रहस्योद्घाटन की तुरही के बारे में नहीं सोचते हुए, जो अभी तक नहीं लिखा गया था, बल्कि एक अंतिम सभा तुरही है। मैथ्यू 24:43, और यह एक ऐसा मूल भाव है जो मुझे ईश्वर के आगमन के प्राचीन यहूदी साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। वह रात को चोर के समान आता है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:02। वह रात को चोर की तरह आता है। और आपने प्रकाशित वाक्य 3:03, प्रकाशित वाक्य 16:2-3 इत्यादि में इसका उल्लेख किया है, यीशु एक चोर की तरह आ रहा है। खैर, पॉल का स्पष्ट आशय यीशु की शिक्षाओं का उल्लेख करना था, और यहाँ हमने इन्हें यीशु के कुछ शुरुआती कथनों के रूप में पुष्टि की है। एक अर्थ में नए नियम में इसकी पुष्टि की गई है। प्रारंभिक यहूदी धर्म में कई अलग अलग अंतिम समय के परिदृश्य थे, लेकिन पॉल बिल्कुल उन्हीं उद्देश्यों को प्रतिध्वनित करता है जो यीशु ने सिखाए थे। पॉल ने इन्हें प्रभु के स्वयं के वचन के द्वारा दिया है, और 2 थिस्सलुनीकियों में उन शिक्षाओं के द्वारा जो पॉल ने उन्हें दी थी, वह भाषा जो किसी ने पहले शिक्षक से प्राप्त की थी, उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो नए नियम के सबसे शुरुआती पत्र इस बात की पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि यीशु ने अंत समय की चीजों के बारे में उसी तरह बात की थी जिस तरह हमने गॉस्पेल में लिखी है। लेकिन वे हमें कुछ और भी सुझाते हैं। यीशु ने मैथ्यू 24:29 में उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद अपने दूसरे आगमन के बारे में बात की। अब पॉल यीशु की इन बातों का उपयोग विश्वासियों के स्वर्गारोहण या हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाने के बारे में बात करने के लिए करता है। रैप्चर एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पकड़ना। ईसाइयों को हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाने के बारे में मुलाकात के लिए उनका शब्द, अगर इसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाता है जैसे आम तौर पर किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि हम पृथ्वी के रास्ते में उनके एस्कॉर्ट से नीचे उतरते समय उनसे मिलते हैं। तो पॉल कहते हैं कि यीशु एक जयकारे के साथ स्वर्ग से उतरते हैं। प्राचीन काल में जब चिल्लाहट को तुरही के साथ जोड़ा जाता था तो वह आम तौर पर युद्ध की चीख होती थी। पॉल पूरी तरह से इस बात से अनभिज्ञ लगता है कि कोई भी इसे दूसरे आगमन से अलग समय पर रख सकता है जिसे यीशु ने अपवित्रता के बाद के रूप में वर्णित किया है, जिसे हम एंटीक्रिस्ट कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल इसे दूसरे आगमन पर रखता है। अब मुझे पता है कि इस बिंदु पर मेरे दर्शक अलग अलग राय रखते हैं, इसलिए मैं आपसे मेरे साथ धैर्य रखने के लिए कहता हूं। अलग अलग राय हैं। मैं इसमें ज्यादा गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह कहने दीजिए, पूरे इतिहास में लोगों द्वारा अनेक प्रकार के विचार रखे गए हैं, और परमेश्वर ने ऐसे लोगों का उपयोग किया है जिनके पास पूरे इतिहास में अनेक प्रकार के विचार हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में यह 1000 साल की अवधि के बारे में बात करता है, और इसकी कई अलग अलग तरीकों से व्याख्या की गई है। अधिकांश आरंभिक चर्च पिताओं का मानना था कि भविष्य में 1000 वर्ष की अवधि होगी। जाहिर तौर पर जस्टिन शहीद, पापियास और आयरेनियस सभी इस पर विश्वास करते थे। बाद की शताब्दियों में, विशेष रूप से कॉन्स्टेंटाइन के बाद जो प्रमुख हो गया, आरंभिक ईसाइयों का मानना था कि वे या तो महान क्लेश में थे या वे इससे गुजरने वाले थे, और फिर उन्होंने माना कि 1000 साल की अवधि थी। कॉन्स्टेंटाइन के बाद चर्च ने कहना शुरू किया, हम क्लेश से गुजर चुके हैं, अब हम सहस्राब्दी में हैं, हम मसीह के साथ राज्य कर रहे हैं। वह प्रमुख दृष्टिकोण बन गया। यूसेबियस के समय तक यह निश्चित रूप से प्रभावी था। उनका कहना है कि इनमें से कुछ पूर्व सहस्राब्दीवादी भी थे, लेकिन अन्य विधर्मियों के विपरीत उनसे उनके विधर्म के बारे में बात की जा सकती थी। उनके बारे में बात करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सहस्त्रवर्षीय दृष्टिकोण प्रमुख हो गया। हालांकि इस बिंदु पर सहस्राब्दीवाद का स्वरूप सहस्राब्दी की शुरुआत यीशु के प्रथम आगमन के साथ नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटाइन के समय के आसपास शुरू हुआ, तो यह वास्तव में एक प्रकार का सहस्राब्दियोत्तर दृश्य था। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के बाद यीशु वापस आएंगे, लेकिन इस सहस्राब्दी के कथित तौर पर शुरू होने के 1000 साल बाद लोग कह रहे थे, ठीक है, अंतिम निर्णय कहाँ है, अब तो आ ही जाना चाहिए। और इसलिए उसके बाद चर्च के इतिहास के बारे में आपके कुछ अलग विचार थे। सहस्त्राब्दी के बाद का दृष्टिकोण यह दृष्टिकोण कि हम पृथ्वी पर राज्य स्थापित करेंगे और यीशु वापस आएंगे, जैसे ग्रंथों पर आधारित था, ठीक है, जब राज्य की खुशखबरी हर जगह प्रचारित की गई है तो हर जगह इसका प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि हमने ऐसा किया है, सर्वत्र राज्य स्थापित किया। लेकिन किसी भी मामले में महान जागृति के कई नेताओं का यही प्रमुख दृष्टिकोण था। जोनाथन एडवर्ड्स का यही विचार था। अमेरिका में द्वितीय महान जागृति के नेताओं में से कई ने यही विचार रखा। चार्ल्स फिन्नी, यदि आपने इन लोगों के बारे में सुना है, 1800 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम गृह युद्ध तक और गृह युद्ध के बाद भी कई लोगों के लिए अमेरिकी ईसाई प्रचारकों के बीच प्रमुख दृष्टिकोण यह था, हम पृथ्वी पर राज्य स्थापित करेंगे। वर्ष 1830 के आसपास जॉन नेल्सन डार्बी नामक एक ब्रिटिश विचारक युगवाद का एक रूप लेकर आए। अब उनका युगवाद उस प्रकार के युगवाद से भिन्न है जो आज प्रगतिशील युगवादियों के बीच है, लेकिन डार्बी ने कहा, ठीक है, भगवान यहूदियों और चर्च के साथ एक ही समय में व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए अंतिम क्लेश के दौरान इसराइल से निपटने से पहले चर्च को बाहर निकालना होगा। और इससे यह विचार आया कि चर्च 1000 साल की अवधि से पहले अंतिम क्लेश से बच जाएगा, और लोग किसी समय इस संकट की उम्मीद कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि वह दृष्टिकोण क्यों लोकप्रिय हो गया, लेकिन यह वास्तव में स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल द्वारा प्रसारित हुआ और तब व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। 1830 तक किसी के भी रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है कि उसने किसी संकट से पहले इसे पकड़ना सिखाया हो। इससे पहले हर कोई या तो मानता था कि वे क्लेश में थे या वे क्लेश से गुजरने वाले थे, जहां क्लेश पूरे चर्च के इतिहास को संदर्भित करता था। अलग अलग तरह के विचार थे, लेकिन मैं जो तर्क दे रहा हूं वह यह है कि चर्च अपने अधिकांश इतिहास और चर्च के कई हिस्सों में सही था। शायद चर्च के अधिकांश हिस्से अभी भी इस बात पर कायम हैं कि पकड़ दूसरे आगमन पर होती है। जब यीशु आते हैं तो वह 7 वर्षों तक स्वर्ग वापस नहीं जाते हैं, परंतु जब वह आता है तो इस संसार का राज्य हमारे परमेश्वर और उसके मसीहा का राज्य बन जाता है और वह सदैव राज्य करेगा। यही कारण है कि पौलुस 2 थिस्सलुनीकियों 2 में यीशु के आने और हमारे उसके पास एकत्र होने के विषय में भी कहता है। और ग्रीक में ये संभवतः एक ही चीज को संदर्भित करते हुए एक साथ बंधे हैं। उन्होंने कहा, यह जिसमें हमारा उनके पास इकट्ठा होना भी शामिल है, प्रभु के दिन को आगे नहीं बढ़ाएगा। खैर, पॉल पहले ही प्रभु के दिन के बारे में कह चुका है। वह पहले ही इस बारे में बात कर चुका है कि 1 थिस्सलुनीकियों 5 में प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। वह प्रभु का आसन्न दिन है जिसकी हम आशा कर रहे हैं। 2 पत्रस भी उस बारे में बात करता है। प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, जिसमें आकाश बड़े शोर से नष्ट हो जाएगा और तत्व भीषण गर्मी से पिघल जाएंगे। वह अंत की बात कर रहा है, उसके बाद कोई क्लेश नहीं होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में पॉल 2 थिस्सलुनीकियों 2 में कहता है, इससे प्रभु का दिन आगे नहीं बढ़ेगा। और वह कहता है कि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्मत्याग पहले न हो जाए और अधर्म का आदमी प्रकट न हो जाए और परमेश्वर के सिंहासन पर न बैठ जाए। तो वह निश्चित रूप से क्लेश के बारे में कुछ बात कर रहा है, हालांकि आप इसे उससे पहले ले लें। वह 2 थिस्सलुनीकियों 1 में यह भी कहता है कि जब तक यीशु दुष्टों को नष्ट करने और सार्वजनिक रूप से संतों की महिमा करने के लिए नहीं आते, तब तक हमें अपने कष्टों से आराम नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु उन्हें नष्ट करने के लिए चोर की नाई उन पर चढ़ गया। यदि आप उन सभी परिच्छेदों को देखें जिनके बारे में बात की जाती है, तो हम न तो उस दिन को जानते हैं और न ही घंटे को। सभी परिच्छेदों में जो उसके चोर की तरह आने की बात करते हैं, अप्रत्याशित रूप से संदर्भ में आते हैं, उन्हें संदर्भ में पढ़े। वे सभी परिच्छेद अंत के बारे में बात कर रहे हैं, उसके 7 साल या 3.5 साल पहले की बात नहीं। आज कई स्थानों पर लोकप्रिय दृष्टिकोण यह है कि यीशु किसी भी अंतिम संकट की अवधि से पहले अपने चर्च को बाहर ले जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यह लोकप्रिय क्यों है। और मेरा अनुमान है कि मेरे कुछ सहकर्मी जो इस श्रृंखला के अन्य भागों का फिल्मांकन कर रहे हैं, उनका यही विचार है। और हम समान दृष्टिकोण रखे बिना भी परस्पर एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मैथ्यू 24 और मार्क 13 में यीशु जिस क्लेश के बारे में बात कर रहे थे, वह शायद बहुत पहले शुरू हो गया था। 1830 तक किसी ने भी वास्तव में यह विचार नहीं रखा था, या दूसरे चरण में 2 अलग-अलग चरणों के बारे में इस दृष्टिकोण को रखने के रूप में निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अब यह मामला होने पर मैं सुझाव दूंगा कि यह संभव है कि यीशु हमें किसी चीज के बारे में चेतावनी देना चाहते थे। जब यीशु कष्टों के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनसे बाहर निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में चर्च लंबे समय से इनके बीच से गुजर रहा है। मैं कुछ दशक पहले एक संप्रदाय के मुख्यालय में था जब चीन में चर्च माओ के समय में रेड गार्ड्स के अधीन था, और उस समय चीन में कई अन्य लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन उस दौरान ईसाइयों को सचमुच बहुत गंभीर कष्ट सहना पड़ा था, और कुछ पश्चिमी मिशनरी आए और उन्होंने कहा, ओह, हमें देश में वापस आने की अनुमति है, हम आपसे मिलने वापस आए हैं। और उन्होंने कहा, तूने हमसे कहा कि हम क्लेश से न गुजरेंगे, कि हम बड़े क्लेश से पहले स्वर्गारोहित किए जाएंगे। और जब आप गायब हो गए, तो हमने सोचा कि आप स्वर्गारोहित हो गए हैं और हमें यहां कष्ट सहने के लिए छोड़ गए हैं। हम यह काम अपने दम पर कर सकते हैं। अब हमें यहां पढ़ाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा होने से पहले हर किसी ने यही नहीं सिखाया था, लेकिन इन विशेष मंडलियों में यही सिखाया गया है। और इस प्रकार उन्होंने उपदेश सुना। अब जॉन नेल्सन डार्बी का स्वयं यह मतलब नहीं था कि ईसाइयों को कष्ट नहीं होगा, लेकिन जमीन पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे इस तरह से लिया है। इसलिए चाहे आप क्लेश से पहले इस उत्साह को बनाए रखें या नहीं, कृपया सुनिश्चित करें कि आप लोगों को बताएं कि यह नहीं सिखाता कि हम पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि पूरे इतिहास में कई ईसाइयों को अपने विश्वास के लिए कष्ट सहना पड़ा है। यीशु कहते हैं कि वे आपके शरीर को मारने के अलावा आपके साथ और कुछ नहीं कर सकते। वे आपसे आपकी आत्मा नहीं छीन सकते। वे आपसे आपका सच्चा जीवन नहीं छीन सकते। पूरे इतिहास में कई ईसाई पहले ही इसका सामना कर चुके हैं। इस पर मेरा थोड़ा सा समय बिताने का एक कारण यह है कि मुझे मूल रूप से वह दृष्टिकोण सिखाया गया था, लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं एक दिन में बाइबल के 40 अध्याय पढ़ रहा था। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हर हफ्ते न्यू टेस्टामेंट पढ़ सकते हैं। मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि संदर्भ में किसी भी छंद में वास्तव में ऐसा नहीं कहा गया है, और मेरे पादरी को वास्तव में इतनी परवाह नहीं थी। लेकिन एक अतिथि प्रचारक मुझे एक तरफ ले गया और कहा, नहीं, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। और मैंने कहा, ठीक है, मुझे इस पर विश्वास करना बेहतर है, क्योंकि मैं सिर्फ एक नया ईसाई हूं और आप जो मुझे बताते हैं मुझे उस पर विश्वास करना होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह सच नहीं था कि भगवान के सभी पुरुष ऐसा मानते हैं या भगवान की सभी महिलाएं ऐसा मानती हैं। और वास्तव में संभवतः इतिहास के दौरान परमेश्वर के अधिकांश पुरुषों और महिलाओं ने इस पर विश्वास नहीं किया है। एक बार जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैंने कहा, मैं फिर कभी किसी को मेरे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। अब से मैं हमेशा वापस जाऊंगा और स्वयं धर्मग्रंथ की जांच करूंगा कि यह वास्तव में क्या कहता है। और वह मेरे लिए साधना वास्तव में स्वयं के लिए धर्मग्रंथों की खोज करने की शुरुआत थी, जो कि प्रभु हमें स्वयं के लिए धर्मग्रंथों की खोज करने के लिए कहते हैं। जीसस कहते हैं, यदि तुम धर्मग्रंथों में खोजो, यदि तुम सच में ही शास्त्रों में खोजो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वही हूँ। पॉल के बारे में बात करता है, ल्यूक बेरियन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने यह देखने के लिए धर्मग्रंथों की परिश्रम पूर्वक खोज की कि क्या पॉल जो कह रहा था वह सच था, और इसीलिए वे पहचान सके कि पौलुस जो कह रहा था वह बहुत कुछ था। इसीलिए वे पहचान सके, उनमें से बहुत से लोग पहचान सके कि पौलुस जो कह रहा था वह सच था। मेरे लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस विशेष शिक्षण पर मुझसे सहमत हैं या नहीं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप यह सोचें कि आप इस विशेष मुद्दे पर धर्मग्रंथ के प्रति कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। अपने लिए धर्मग्रंथ पढ़े, देखें कि क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह दो अलग अलग घटनाओं, भविष्य में यीशु के दो अलग अलग आगमन या दो अलग अलग चरणों के बारे में बात कर रहा है, या क्या ऐसा लगता है कि यह सब एक ही बार में हो सकता है। जैसा कि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कई अनुच्छेदों में यही पाया है। लेकिन सबसे अहम बात सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि अन्य चीजों पर है। अपने लिए धर्मग्रंथ खोजें, यह हमारे अधिकार का सामान्य आधार है, इसीलिए हम धर्मग्रंथ को कैनन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने बस इतना ही कहा है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, एक किंग्स अध्याय 18 में ओबद्याह कहता है कि उसने एक गुफा में 100 भविष्यवक्ताओं को मारा। ऐसे अन्य भविष्यवक्ता भी थे जिनकी भविष्यवाणियां धर्मग्रंथ में भी दर्ज नहीं थीं। मैंने नए नियम में उन सभी भविष्यवक्ताओं का उल्लेख किया, ये सभी भविष्यवाणियां जो पहली शताब्दी में दी जा रही थीं, जो नए नियम में दर्ज नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने बस इतना ही कहा है, लेकिन कैनन एक मापने वाली छड़ी है। कैनन का यही मतलब है। बाइबल वह तरीका है जिससे हम रहस्योद्घाटन के हर दूसरे दावे का परीक्षण करते हैं। परमेश्वर ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा है जो उसी भावना में न हो जैसी कि वहां थी। आत्मा आती है और हमारे हृदयों को प्रमाणित करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। खैर, यह उसी के अनुरूप है जो हम नए नियम में देखते हैं। लेकिन हम ईसाई कई अलग अलग चर्च परंपराओं से आते हैं। हम भाई बहन हैं। हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हम हमेशा हर विवरण पर सहमत नहीं होते हैं। हमें भाई बहन नहीं बनना है, लेकिन अधिकार के लिए हमारे पास एक समान आधार है। और जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो कभी कभी हमें धर्म ग्रंथों की खोज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और अक्सर हम देखेंगे कि हमें जो सिखाया गया है वह सही है। लेकिन कभी कभी हम देखेंगे कि कुछ चीजें जो हमें सिखाई गईं, ठीक है, हो सकता है कि किसी अन्य परंपरा के हमारे कुछ भाइयों और बहनों के पास हमें सिखाने के लिए कुछ हो। मैं आपको अपनी परंपरा बदलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ विश्वासियों के रूप में कह रहा हूँ, हम सभी को वचन की ओर वापस जाने की जरूरत है। योशियाह के दिन यही हुआ। दो राजाओं 22 में उन्हें मंदिर में कानून की पुस्तक मिली और योशियाह ने इतना ही नहीं कहा, ठीक है, यह वास्तव में हमें संबोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो मेरे समय में अन्य लोग वे इस तरह से नहीं जी रहे हैं और मुझे यकीन है कि वे ईश्वरीय होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम उस तरह से नहीं जी रहे हैं जिस तरह से यह पाठ हमें बताता है कि हमें जीना है। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उसने उस समय के प्रमुख भविष्यवक्ता को भेजा जिसने उसे यह व्याख्या भेजी कि उसके दिन के लिए इसका क्या अर्थ होगा। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और इससे पुनरुत्थान हुआ। हर चीज का ख्याल नहीं रखा। उनके समय में चीजें कुछ मायनों में बहुत आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन हमें शास्त्रों की ओर वापस जाने की जरूरत है। हमें लोगों को धर्म ग्रंथों की ओर वापस बुलाने की जरूरत है। हमें यह सुनने की जरूरत है कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। हमें बड़े पर प्रमुख और छोटे पर छोटे की जरूरत है। हम असहमत हो सकते हैं। हम अब भी भाई बहन हैं। लेकिन हमें इसका सबसे अच्छा मर्म तब मिलेगा जब हम वापस जाएंगे और स्वयं ईश्वर की बात सुनेंगे क्योंकि हम सुनेंगे कि धर्म ग्रंथों ने हमसे क्या कहा है। और जो लोग पढ़ नहीं सकते जो सुनते हैं कि शास्त्रों ने हमसे क्या कहा है। आइए हम पूरे दिल से उसके लिए तरसें। खैर, मैथ्यू 24 में मूल में कोई अध्याय विराम नहीं है जो सीधे मैथ्यू अध्याय 25 में ले जाता है। जैसे ही यीशु इस बारे में बात करते हैं कि अंत में क्या होने वाला है। मत्ती 25 पर जाने से पहले मैं मत्ती 24 श्लोक 45 से 51 तक कह चुका हूं। यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि जो सेवक अपने स्वामी की इच्छा जानता था और उसे नहीं करता था वह बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, और जो नौकर साथी नौकरों की देखभाल करने के लिए छोड़ा गया था वह उन्हें उचित समय पर खाना और उन्हें उचित समय पर पेय देता था जबकि स्वामी चला गया था। मालिक ऐसे समय वापस आने वाला है जब नौकर को पता नहीं चलता, और यह उस नौकर के लिए बहुत अच्छा होगा जो वह कर रहा है जो उसे करना चाहिए। लेकिन अगर वह नौकर अपने साथी नौकरों की देखभाल करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उनका शोषण कर रहा है और संसाधनों का उपयोग सिर्फ अपने लिए कर रहा है तो यीशु कहते हैं कि वह आएंगे और वह उस नौकर को टुकड़ों में काट देंगे और उन्हें बाहरी अंधेरे में डाल देंगे। अब किसी को टुकड़े टुकड़े करना उन चीजों में से एक था जिसे बहुत ही कठोर सजा माना जाता था। यदि हम परमेश्वर के लोगों के बीच नेतृत्व की स्थिति में हैं तो हमें अपने साथी सेवकों के सेवक के रूप में वह पद ग्रहण करना होगा। पादरी भेड़ों का चरवाहा होता है। यहेजकेल 34 में वह कहता है, ये चरवाहे भेड़ों की देखभाल नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ अपना ख्याल रख रहे थे। यदि हमारे पास मसीह के शरीर में कोई पद है तो आइए इसका उपयोग अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करने के लिए करें क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देते हैं जो उनका और हमारा दोनों पर प्रभु है और जो उनसे वैसे ही प्यार करता है जैसे वह हमसे प्यार करता है। मैथ्यू अध्याय 25 इस दूसरे आगमन के लिए इस तरह से तैयार होने के बारे में एक और दृष्टांत है जैसे कई लोग उसके पहले आगमन पर नहीं थे। वह 10 कुंवारियों और 10 वधू सहेलियों का दृष्टांत बताता है। आम तौर पर दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक एक जुलूस होता था। उनके पास आम तौर पर मशाले होती थीं क्योंकि आम तौर पर यह काम रात में किया जाता था। जोआचिम जेरेमियास इस बारे में बात करते हैं कि आधुनिक काल में उनके समय में फिलिस्तीनी गांवों में इसका अभ्यास कैसे किया जाता था। मेरे पास इससे अधिक ताजा जानकारी नहीं है। इसका अभी भी उसी तरह अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से प्राचीन काल में मैंने प्राचीन स्रोतों की खोज की है और प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया भर में तटस्थ मशाले मानक थीं। यह प्राचीन साहित्य में हर जगह मौजूद है। तो आप जानते हैं, आपके दीपक जलना, आपकी मशाले जलना बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय लैंप से उनका यही मतलब था। सामान्यतः मशाले जैसा कुछ होगा। आमतौर पर ऐसा ही होता था। दुल्हन की सहेली बनना एक बड़े सम्मान की बात थी। गड़बड़ करना सचमुच बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। ध्यान रखें कि दुल्हन की सहेलियां आमतौर पर सुंदर युवा कुंवारी होती थीं। वे अक्सर किशोरावस्था में ही शादी कर लेते थे, तो संभवतः ये युवा किशोर हैं। वे दुल्हन के दोस्त हैं और वे स्वयं दुल्हन बनने की आशा कर रहे हैं। खैर, अगर वे पूरे समुदाय के सामने गड़बड़ करेंगी तो उनके लिए पति पाना बहुत कठिन हो जाएगा। अक्सर पूरे गांव को शादी में आमंत्रित किया जाता था, जैसा कि हमने पहले कहा था, और अक्सर ये शादियां 7 दिनों तक चलती थीं। खैर, जब दुल्हन आएगी तो वे तैयार नहीं होंगे। ठीक ठीक अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वह कब आएगा, क्योंकि उसके आने और अपनी दुल्हन को लेने से पहले सब कुछ तैयार करना होगा। खैर, वे जुलूस में हिस्सा नहीं ले सकते। जो 5 तैयार थे वे भाग ले सकते थे, लेकिन जो 5 तैयार नहीं थे उन्हें बाहर कर दिया गया। उनसे कहा गया है, तुम्हें पता है तुम अंदर नहीं आ सकते। अब ध्यान रखें कि ये शादी की दावतें 7 दिनों तक चलती हैं। लोग अंदर बाहर आते जाते रहेंगे। दावत के 7ों दिन हर कोई वहां नहीं रहेगा। वे बाहर बंद हैं। उन्हें अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। और उनसे कहा जाता है, हम तुम्हें नहीं जानते। खैर, जाहिर तौर पर गांव में हर कोई उनके बारे में जानता होगा, लेकिन यह अस्वीकृति का एक फार्मूला था, दुर्भाग्य से कुछ ऐसा जिसे पतरस यीशु के लिए उपयोग करता है। मैं उस आदमी को नहीं जानता। मैं आपको नहीं जानता। वह उन्हें जानने से इनकार कर रहा है। उन्हें दावत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। यह उस किशोर लड़की के लिए बहुत डरावनी और शर्म की छवि है जो इसे सुन रही होगी, लेकिन यीशु इसे हम सभी पर लागू करते हैं। यह हमारे लिए डरावनी और शर्म की तस्वीर है। यीशु ऐसे पात्रों का उपयोग करने के इच्छुक थे जिन्हें उनके दर्शकों में से हर कोई पहचान नहीं पाता। उन्होंने केवल उन विशिष्ट पात्रों का उपयोग नहीं किया जिन्हें अभिजात वर्ग पहचानता था, और बाकी सभी लोग चाहते थे कि वे उनके जैसे होते। उसने सभी को आकर्षित किया। और फिर यीशु तोड़ों का दृष्टांत बताते हैं। यह ल्यूक में माइनस के बारे में एक छोटी मात्रा के समान है। मैं स्वयं नहीं जानता कि यह वही दृष्टांत है। मुझे लगता है कि यह शायद अलग है, लेकिन विषयों में कुछ ओवरलैप है। ल्यूक का दृष्टांत ल्यूक 19 में है और एक राजा के बारे में बात करता है जो राज्य प्राप्त करने के लिए दूर देश में जाता है। खैर, हर कोई जानता था कि ऐसा कभी कभी होता है। हेरोदेस महान को अपना राज्य पाने के लिए रोम जाना पड़ा और उसके अधिकार की पुष्टि हो गई। उसके बेटे आर्केलॉस ने भी ऐसा ही किया। लेकिन किसी भी मामले में हम यहां मैथ्यू अध्याय 25 में प्रतिभाओं के दृष्टांत को देख रहे हैं। चंद लोगों के पास पूंजी थी। कुछ ही लोग वास्तव में निवेश कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया वे बड़ी आय अर्जित कर सके, क्योंकि उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जिनके पास यह थी। वे उधार देकर और उस पर ब्याज वापस लेकर अपनी आय दोगुनी या अधिक कर सकते हैं। तो पहले दो नौकर अपनी आय निवेश करते हैं और वे इसे दोगुना कर देते हैं, और उनका स्वामी उनसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जब लोगों के पास आय हो तो यही आशा की जानी चाहिए। लेकिन फिर आपके पास यह आलसी नौकर है। उसने कहा, अच्छा, मैंने इसे भूमि में छिपा दिया, और उसने इसे रुमाल या कपड़े में लपेटकर भूमि में छिपा दिया। वह सबसे कम सुरक्षित चीज थी। तुम इसे जमीन में मत छुपाओ। मेरा मतलब है, कम से कम यदि आप इसे जमीन में छुपाने जा रहे हैं तो आप एक मजबूत बक्से का उपयोग करते हैं, लेकिन आप इसे कपड़े में जमीन में नहीं छिपाते हैं। वह कहता है, ठीक है, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास है। शायद कोई भी नौकर मालिक से इस तरह बात नहीं करने वाला था, क्योंकि यह उसका अपमान था। जो तुम्हारा है ले लो। और उसने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। वह भी अपमान था। मेरा मतलब है, हम अक्सर अपनी संस्कृति में इसे इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस संस्कृति में वह यही कह रहे थे। वह तो अपने बहाने के तौर पर मालिक का अपमान कर रहा है। मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि आप मूल रूप से इससे कोई पैसा कमाएं जो आपने मेरे लिए छोड़ा था। तो मैं सिर्फ तुम्हें वही दे रहा हूं जो तुम्हारा है, क्योंकि तुम मतलबी हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। खैर, वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। हम भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते। भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं। हमें उन संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो भी उपहार उसने हमें दिए हैं, जो भी आर्थिक संसाधन उसने हमें दिए हैं। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करें। भगवान के लिए अपने संसाधनों का उपयोग न करके भगवान का अपमान न करें। ऐसा ही वे लोग करते हैं जो अपना जीवन अन्य चीजों पर बर्बाद करते हैं। मैथ्यू अध्याय 25 में भेड़ और बकरियां अंतिम दृष्टांत हैं। यीशु यहां राजा और न्यायाधीश के रूप में प्रकट होते हैं। वह दिव्य है। भेड़ों को बकरियों से अधिक मूल्यवान माना जाता था, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह भेड़ों का अच्छे तरीके से और बकरियों का बुरे तरीके से उपयोग करता है। बकरियां भी अक्सर विद्रोही होती थीं, लेकिन भेड़ें बहुत आज्ञाकारी होती थीं। इसलिए लोग बकरियों की तुलना में भेड़ों को अधिक पसंद करने लगे। इसके अलावा यीशु भेड़ों को कहते हैं, वह उन्हें अपने दाहिने हाथ पर बुलाते हैं, बकरियों को अपने बाई ओर। दाएं को बाएं से अधिक प्राथमिकता दी गई। बेशक हम समझते हैं कि बाएं हाथ से काम करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया में बाएं हाथ की तुलना में दाएं को प्राथमिकता दी जाती थी। खैर, इनमें से सबसे छोटे कौन हैं? उसके भाई बहन, जिन्हें इनाम मिलने वाला है। खैर, इस पर अलग अलग राय है। इनमें से सबसे छोटे वे भाई बहन हैं जिनका न्याय किए जाने वाले लोगों ने स्वागत किया था, और जिनका न्याय किया जा रहा था उन्हें भोजन इत्यादि दिया गया था। एक विचार यह है कि इनमें से सबसे कम गरीबों को संदर्भित करता है। यह विचार मदर टेरेसा का था। यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त रोनाल्ड साइडर के पास है, जो गरीबों की देखभाल के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसे कई अन्य लोगों ने भी धारण किया है, जिनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। रॉन और मैंने इस बारे में बात की है। फिर आप अलग अलग विचार रख सकते हैं, और यह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह संभवतः मिशनरियों को संदर्भित करता है। अधिकांश अन्य न्यू टेस्टामेंट विद्वान भी यह मानते हैं कि यह मिशनरियों को संदर्भित करता है। मिशनरियों से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसकी हमारी पारंपरिक समझ है, बल्कि मैथ्यू अध्याय 10 में वर्णित लोगों को पसंद करते हैं जो अन्य लोगों और अन्य लोगों के साथ अच्छी खबर साझा करने के लिए बाहर जाते हैं। वे ऐसा करने के लिए सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने को तैयार हैं और वे अच्छी खबर अपने साथ ले जाते हैं। व्याख्या में अंतर क्यों है? खैर, निश्चित रूप से यीशु को गरीबों की परवाह है। आपके पास वह अन्य अनुच्छेदों में है। नीतिवचन के बारे में सोचो, जो कंगालों को दान देता है वह यहोवा को उधार देता है और यहोवा उसे चुका देगा। इसलिए जब कोई कहता है, आपने इनमें से सबसे कम गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी किया है वह आपने यीशु के लिए किया है। खैर, एक अर्थ यह है कि यह सच है। कहावतें यही कहती हैं। इसलिए मैं वास्तव में इस बिंदु पर धार्मिक रूप से लोगों से असहमत नहीं हूं, लेकिन मैथ्यू अध्याय 25 में इस विशेष मार्ग की व्याख्या का क्या मतलब है? खैर, अन्यत्र यीशु के भाई बहन कौन हैं? अध्याय 12 श्लोक 48 से 50 तक देखें, जो उनके शिष्यों की ओर इशारा करता है। यीशु ने कहा, यहां मेरी माता और मेरे भाई और मेरी बहनें हैं। जो कोई भी मेरी इच्छा पूरी करता है, और मैं इसका अनुवाद इस प्रकार करता हूं क्योंकि एडेल्फोस, जब इसका उपयोग बहुवचन में किया जाता है तो आप पुल्लिंग का उपयोग करते हैं यदि समूह में कोई पुरुष हैं, लेकिन इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। ग्रीक भाषा इसी तरह काम करती है। सो जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माता है। तो मैथ्यू में अन्यत्र उसके भाई बहन कौन थे? खैर, जो कोई अपने पिता की इच्छा पर चलता है। अध्याय 23 श्लोक 8, तुम्हें रब्बी नहीं कहा जाएगा क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है और तुम सब भाई बहन हो। अध्याय 28 श्लोक 10 में यीशु ने कब्र की स्त्रियों से कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील चलें, वहां वे मुझे देखेंगे। अच्छा, वे भूखे क्यों थे? अध्याय 10 श्लोक 11 से 14 तक, जब भी आप किसी शहर या गांव में प्रवेश करें तो वहां किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करें और जब तक आप वहां से न निकले तब तक उनके घर पर रहें। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे या तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पैरों की धूल झाड़ देना। इसलिए उन्हें आतिथ्य पर निर्भर रहना पड़ता था और जब वे आते थे तो वे भूखे हो सकते थे, वे प्यासे हो सकते थे, लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा, उनका स्वागत करना होगा। यदि आप सुसमाचार के दूतों का स्वागत करते हैं और उनके संदेश को अपनाते हैं तो न्याय के दिन आपको भी स्वीकार किया जाएगा। और हम में से बहुत से लोग जो इस मैथ्यू पाठ्यक्रम को कर रहे हैं वे भी हैं जो जाते हैं और सुसमाचार साझा करते हैं। परंतु मत्ती 10 श्लोक 40 से 42, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आह, तो आपने इनमें से जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए किया है। और यदि कोई इन छोटों में से किसी को एक कटोरा ठंडा पानी भी इसलिए दे कि वे मेरे चेले हैं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल न खोएंगे। यह 10:40 से 42 है। उसी तरह हम स्थानों पर जा रहे हैं जैसे लोग अन्य समूहों के लोगों के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए अपने घर छोड़ देते हैं जिनके पास खुशखबरी तक उतनी पहुंच नहीं है। यह एक ही देश के भीतर भी हो सकता है, लेकिन केवल उन लोगों के विभिन्न समूहों के लिए जिनके पास संदेश तक पहुंच नहीं है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, सुसमाचार के ये दूत प्रभु के स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जो कोई उन्हें प्राप्त करता है वह प्रभु को प्राप्त करता है जिसका संदेश वे लाते हैं, और कभी कभी वे भूखे भी हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें प्यास लग सकती है। कभी कभी वे खराब कपड़े पहने हो सकते हैं। पॉल इन सभी चीजों से गुजरा। कभी कभी वह कहता है कि वे बीमार हो सकते हैं। वे जेल में हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे मिलते हैं जैसा कि उन लोगों से अपेक्षित था जो बीमार थे या जेल में थे जो आपको पसंद थे। आपको उनसे मिलने जाना था। संदेशवाहकों को प्राप्त करने में संदेश प्राप्त करना भी शामिल है। तो अंत के समय में राष्ट्रों का न्याय कैसे किया जाता है? भेड़ और बकरियों में कैसे अंतर किया जाता है? उनकी पहचान इस बात से होती है कि उन्हें अच्छी खबर मिली है या नहीं, उन्होंने अच्छी खबर का स्वागत किया है या नहीं। फैसले के दिन यही निर्णय का मानक होगा। और इसीलिए अंत आने से पहले सभी राष्ट्रों के बीच राज्य की खुशखबरी का प्रचार किया जाना चाहिए। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 17 है, मैथ्यू 24:25।